ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। लोकसभा में भारत के संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर लगभग 15 घंटों से अधिक चर्चा की गई। चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भाग लिया। दो दिनों तक चली इस चर्चा की शुरुआत कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को केंद्र में रखकर राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। चर्चा के दौरान भाजपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा, शिवसेना, जदयू और एनसीपी समेत कई राजनीतिक दलों के सदस्यों ने संविधान के अलग अलग प्रावधानों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में हुई इस चर्चा का जवाब दिया। वहीं राज्यसभा में संविधान के 75 साल की यात्रा पर सोमवार से चर्चा शुरू होगी। इसके लिए दो दिन का समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान देश में एकता का मुख्य स्तंभ है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है, विश्व के लिए प्रेरक रहा है। भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र हैं, इतना ही नहीं, हम लोकतंत्र की जननी हैं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से देश में एकता लाने के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया और एक राष्ट्र एक कर जीएसटी लागू किया गया। श्री मोदी ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एक राष्ट्र एक ग्रिड और समावेशी बुनियादी ढांचे के विकास से देशवासियों को सहायता मिली है। तेज आर्थिक विकास पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है और देश आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण में महिलाओं के योगदान को भी याद किया और कहा कि पिछले वर्ष संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इस पार्टी ने संविधान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के 60 साल के शासन के दौरान संविधान में 75 बार बदलाव हुए। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1971 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना करके न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करने के लिए संविधान में बदलाव किया। इससे पहले चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संविधान निर्माण में डॉ भीमराव अंबेडकर के योगदान की सराहना की। श्री रिजिजू ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को कानूनी संरक्षण मिल रहा है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता विपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, किसानों और महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचारों के मुद्दों पर सवाल उठाए। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के दौरान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता खत्म हो गई है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने संविधान के बारे में श्री गांधी की समझ पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही देश में आपातकाल लगाया था। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि संविधान के बल पर ही आपातकाल को खत्म किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री सम्मेलन को कल संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अगले वर्ष 1 जनवरी से प्रभावी होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पराली जलाने की समस्या का व्यवस्थित समाधान निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इसे लोगों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान करने के बाद श्री धनखड़ ने उन हानिकारक पर्यावरण स्थितियों का समाधान निकालने का आग्रह किया जिनका राष्ट्रीय राजधानी हर वर्ष सामना करती है। दक्षिण कोरिया की संसद में आज राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। राष्ट्रपति यून ने इस महीने की शुरुआत में देश में अल्पकालिक मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने जापान को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत के लिए दीपिका, साक्षी राणा और मुमताज ने 1-1 गोल कर टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।